नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच के लिए समिति गठित की। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद को मंजूरी दी। इसराइल की हिजबुल्लाह को चेतावनी के बाद भारत ने लेबनान के लिए यात्रा परामर्श जारी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, क्वाड देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना के साथ ड्रॉ खेला। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीति में बदलाव की सिफारिश करेगी। मंत्रालय ने बताया कि समिति में शहरी मामलों के मंत्रालय के अपर सचिव, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव, गृह दिल्ली पुलिस के विशेष सीपी, अग्निशमन सलाहकार और अन्य शामिल होंगे। ये समिति 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों में आज इस मुद्दे पर चर्चा हुई। लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस ने इस घटना की जांच की मांग की। भाजपा सदस्य बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि ये दिल्ली सरकार की लापरवाही का परिणाम है।
पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी।
कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि भवन नियमों समेत अनेक नियमों का उल्लंघन किया गया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कोचिंग सेंटर को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी?
उधर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा के दौरान भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने इसे आपराधिक लापरवाही बताते हुए इस मामले की विस्तृत जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने केंद्र ने कोचिंग केंद्रों के नियमन पर इस साल जनवरी में दिशा निर्देश जारी किए थे। अगर इन दिशा निर्देशों को सुनिश्चित किया गया होता तो ऐसी त्रासदी नहीं होती। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
जो FIR हुई है उसमें पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और ये जितने भी अधिकारी हैं इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो इस तरीके का लापरवाही या भ्रष्टाचार करने की।
सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग व्यवसाय बन गई है और जब भी अखबार खोलते हैं तो पहले एक या दो पन्ने कोचिंग सेंटर के विज्ञापनों के होते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार पर लापरवाही बरतने और मॉनसून से निपटने के लिए पहले से तैयारी नहीं करने का भी आरोप लगाया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें इमारत के बेसमेंट के मालिक और गेट को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति भी शामिल है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग की है। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर अध्यक्ष की गरिमा कम करने का आरोप लगाते हुए उनकी कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना पर विपक्ष के नेता गलतफहमियां फैला रहे हैं और वो सदन में अग्निवीर योजना पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि श्री गांधी का यह व्यवहार लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करता है।
बहुत ही दुख की बात है, श्री राहुल गांधी जी एक संवैधानिक व्यवस्था में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए जिस तरह का उनका व्यवहार है, पार्लियामेंट में जिस तरह की वो भाषा उपयोग में करते हैं, संवैधानिक पद जो अध्यक्ष जी का पद है उस पद को भी वो क्वेश्चन करते हैं, ये डेमोक्रेसी को, संविधान को कमजोर करने वाले एक्शंस हैं।
श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में नौकरियों की कमी नहीं है और वर्तमान सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप के कारण देश में बेरोजगारी दर कम होकर 3.2% हो गई है। लोकसभा में उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में बेरोजगारी दर 3% से नीचे आ जाएगी।
मोदी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, कई टाइप की योजनाएं चलाई गई, लोगों को रोजगारी का अवसर मिला और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 3.2% है।
डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के पैकेज से 5 साल की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल के अवसर उपलब्ध होंगे। देश में स्टार्टअप्स की संख्या 1,40,000 से अधिक हो गई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने देश में 15 लाख से अधिक नौकरियां सृजित की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने तटरक्षक बल की क्षमता बढ़ाने के लिए नवीनतम अत्याधुनिक प्रणाली के साथ 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के लिए स्वीकृति दी है। इन नौकाओं का उपयोग तटीय निगरानी और गश्त, खोज तथा बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में रक्षा खरीद परिषद की बैठक में ये स्वीकृति दी गई। ये उपकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। बैठक में भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए उन्नत भूमि नेविगेशन प्रणाली की खरीद की स्वीकृति सहित विभिन्न पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई को एनएसई प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करना है। यह समझौता ज्ञापन 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में आज राउज एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया। श्री केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ कर रहा है और इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल की हिजबुल्लाह को चेतावनी के बाद भारतीय दूतावास ने लेबनान के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि लेबनान में रहने वाले भारतीय या यात्रा करने की योजना बनाने वाले बेरूत में दूतावास के संपर्क में रहें। भारतीय दूतावास ने कहा कि क्षेत्र में हालिया घटनाओं के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने को कहा गया है। दूतावास की ईमेल आईडी cons.beirut@mea.gov.in या आपातकालीन फोन नंबर 9617686012 पर संपर्क में रहने को कहा गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्वाड का मंच सहयोग और साझेदारी का आज के समय का सबसे बड़ा उदाहरण है। टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व में स्थिरता, सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से आज का समय चुनौतियों से भरा है और विश्वसनीय साझेदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भी जरूरी हो गया है।
These are not easy times. A major challenge is to ensure global economic growth while also de-risking it. Supply chains are a particular focus for resilience, just as we push for trusted and transparent digital partnerships.
और अब पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
Let me say. हॉकी में भारत और अर्जेंटीना के बीच रोमांचक मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। अर्जेंटीना के लुकास मार्टिनेज ने 22वें मिनट में गोल किया, वहीं भारत की ओर से मैच खत्म होने के 1 मिनट पहले हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया।
सब अपना हार्डवर्क कर रहे थे कि हम इस मैच को जीते और स्कोर करें, बट अगर ड्रॉ भी किया तो वो एज ए टीम हमने अचीव किया है। सबका योगदान है इसमें, जो फिनिशिंग है हमारी और बेहतर हो सकती है, हमारे ओपन जो शॉट्स हुए हैं हमारे और जो पीसी के इतने सारे पीसी मिले हमें, आई थिंक नेक्स्ट मैच में हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं।
उधर बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने आज बेल्जियम के जूलियन केरागी को हराकर ग्रुप मैच जीत लिया।
आई वाज स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट इन द बिगनिंग find a good length from the first court, but again happy with the way I just stuck in there, fought every point till the last end.
वहीं महिला डबल्स के ग्रुप चरण में अश्वनी पनप्पा और तनिषा की जोड़ी आज लगातार दूसरी बार हार गई। तीरंदाजी और निशानेबाजी में आज पदक की उम्मीद थी लेकिन निराशा हाथ आई। तीरंदाजी में पुरुष रिकर्व टीम के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में तरुणदीप राय, धीरज बोमा देवरा और प्रवीण जाधव की तिकड़ी तुर्की की टीम से 2-6 से हार गई। निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट के कांस्य पदक फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल उनका सामना दक्षिण कोरिया की टीम से होगा। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में रमिता जिंदल 7वीं और पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में अर्जुन बबूता 4थे स्थान पर रहे।
ईरान में अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय प्रतिभागियों ने 2 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 5 पदक अपने नाम किए हैं। प्रतियोगिता में 43 देशों के कुल 193 छात्रों ने भाग लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज डायबिटीज यानी मधुमेह की रोकथाम और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के एंड्रोक्रिनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉ राजेश खडगावत श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112342100 और 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच के लिए समिति गठित की। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद को मंजूरी दी। इसराइल की हिजबुल्लाह को चेतावनी के बाद भारत ने लेबनान के लिए यात्रा परामर्श जारी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा क्वाड देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।